ओम शांति। अव्यक्त वाणी 26 मई 1969। संपूर्ण स्नेही की परख। पहला पॉइंट है, सभी किस स्थिति में बैठे हो, लगन में बैठे या मगन अवस्था में, किस अवस्था में हो, ज्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो, अपनी चेकिंग तो करते होंगे। अच्छा, सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर की रिजल्ट का मालूम पड़े, विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। तो आज रिजल्ट सभी सुना देते हैं। बाबा कहते हैं, सभी किस स्थिति में बैठे हूँ। सभी बच्चे अपने आप को चेक करें। जब भी बाप के सामने बैठते हैं तो कौन सी अवस्था में बैठते हैं, अपने आप को क्या समझकर बैठते हैं, अपने आप को क्या समझकर सुनते हैं। समझ की बात है बच्चों के लिए। बहुत बार बच्चे मुरली सुनने बैठते तो हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि हम कौन हैं और किसके सामने बैठे हैं। भक्ति मार्ग की तरह बस बैठ जाते हैं, इसलिए बदलाव नहीं हो रहा है। किसके सामने बैठे हैं और क्या समझ कर बैठे हैं, इस पर निर्भर है आपको प्राप्ति क्या होगी। बच्चे प्राप्ति तो चाहते हैं पर स्वरूप में नहीं आना चाहते। स्वरूप में आ जाइए, प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। बच्चे कहते हैं, ज्ञान समझ में नहीं आता। जिसका ज्ञान है, जो दे रहा है, जिसका मना आत्मा का ज्ञान है, और दे कौन रहा है, बाप दे रहा है। तो अगर बाप दे रहा है तो आत्मा समझकर, बाबा जो है उसे वो समझकर बाप के सामने बैठना चाहिए, तभी ज्ञान समझ में आएगा, बुद्धि में बैठेगा, फिर योग लगेगा, धारणा होगी और सेवा भी आसानी से हो जाएगी। बच्चे स्वरूप में नहीं बैठते और ज्ञान कौन दे रहा है यह नहीं समझते, इसलिए ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता। वरना बाबा ने आत्मा की बुद्धि को ही इस प्रकार से बनाया है कि आत्मा बस एक बार सुने, स्वरूप में आकर एक बार सुने तो वह धारण हो जाएगा, इस प्रकार से बाबा ने आत्मा की बुद्धि को बनाया है। पर बच्चों का काम है स्वरूप में आना। और बात, बच्चे कहते हैं, बाबा योग नहीं लगता। अभी योग कौन लगाने वाला है, आप आत्मा। तो आत्मा समझकर योग लगाने बैठेंगे तो योग लग जाएगा, नाम रूप से योग कहाँ से लगेगा। और जिसके साथ योग लगाना है वो भी तो याद होना चाहिए, उसका स्वरूप भी तो पता होना चाहिए। तभी तो योग लगेगा, वरना योग कहाँ से लगेगा। कोई कहते हैं बाबा अनुभव नहीं होता, कहाँ से होगा, अनुभव करने वाला ही जगह पर नहीं है तो अनुभव कहाँ से होगा। आप अपनी जगह पर आ जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ, अनुभव अपने आप हो जाएगा, योग अपने आप लगेगा। आत्मा को परमात्मा के अलावा और इस दुनिया में कुछ भी याद नहीं आता। आप अपने आप को आत्मा ही नहीं समझते तो आपको परमात्मा कहाँ से याद आएगा। आप नाम रूप में ही फंसे हो तो संसार ही याद आ रहा है। बच्चों के लिए बहुत छोटी सी और बच्चों जैसी समझ की बात है, बच्चों जैसी। आपका जो भी प्रोफेशन है, अगर आप उस स्वरूप में चले गए तो आपको वही याद आएगा जो आपका प्रोफेशन है। नौकरी वाला अगर अपने स्वरूप में चला गया तो उसे ऑफिस का काम काज ही याद आएगा। बिजनेस वाला बिजनेसमैन के स्वरूप में चला गया तो उसे बिजनेस ही याद आएगा, थोड़ी परमार्थ याद आएगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। बस स्वरूप बदल लीजिए, बाबा अपने आप याद आएगा। खेल सारा स्वरूप का है। समय प्रति समय किस स्वरूप में आना है बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चे भूल जाते हैं फिर माया आ जाती है। नाम रूप के हर स्वरूप में माया आपकी साथी है और आत्मा के हर स्वरूप में बाप आपका साथी है। जब माया आपकी साथी है तब आपको दुख मिलेगा, क्योंकि माया को आपके दुख में ही सुख महसूस होता है। और जब बाप आपका साथी है तो आपको सुख मिलेगा, क्योंकि आपके सुख में ही बाप का सुख है। सिंपल सी बात है। इसलिए बच्चे अपने को चेक करें। अभी भी बाबा पूछ रहे हैं सभी किस स्थिति में बैठे हो, अपने को चेक करो। आप कौन से स्वरूप में बैठे हो? बाबा ने बताया भी है आपको कि जब जब ज्ञान सुनने बैठो तो ब्राह्मण स्वरूप में अपने आप को आत्मा समझ के बैठो, तब ज्ञान बुद्धि में उतर जाएगा। ब्राह्मण स्वरूप के अलावा मुरली बुद्धि में नहीं उतरेगी। उसी प्रकार अनादि स्वरूप में रहेंगे तब ही योग लगेगा। समझ की बात है। गहन योग लगेगा अनादि स्वरूप में। नाम रूप में बैठोगे तो योग कहाँ से लगेगा? किसी और स्वरूप में भी योग नहीं लगेगा। गहनता वाला सिर्फ ब्राह्मण स्वरूप में और बाबा कहते हैं अनादि स्वरूप में लगेगा। उसमें भी गहनता में जाना है तो अनादि स्वरूप में ही रहना पड़ेगा। और कोई स्वरूप उसमें योग नहीं लग पाएगा। समझ की बात है। अभी भी सभी बच्चे अपने को चेक करें कि आप अपने आप को क्या समझ कर बाप के सामने बैठे हो, चेक करें। बाबा पूछ रहे हैं सभी किस स्थिति में बैठे हो, लगन में बैठे या मगन अवस्था में, लगन में हो या मगन में हो। मगन माना खो गए, लगन माना खो रहे हैं। बस अभी लगन लग रही है, और मगन मना लगन से परे वाली अवस्था है जिसमें आप खो गए हो। सबसे पहले स्थिति में बैठिए, तो फिर लगन लगेगी। लगन की गहराई में उतरेंगे तो मगन अवस्था में पहुंचना शुरुआत हो जाएगी। और मगन अवस्था में योग गहन लगेगा। मगन अवस्था में जहां आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है सिवाय आप और बाप के, जब तक आपको संसार की कोई भी बात याद आ रही है तब तक आप अपनी स्थिति में नहीं बैठे हो, यह प्रमाण है। समझ की बात है, आपको अपना शरीर भी याद आ रहा है, नाम रूप भी याद आ रहा है, मना आप स्थिति में नहीं हो। इसलिए पहले स्थिति में बैठो, फिर लगन लग जाएगी, फिर मगन अवस्था में पहुंचेंगे, फिर बाप की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। शुरुआत स्थिति से है, लगन में बैठे या मगन अवस्था में। मगन अवस्था में योग में सदा रहना चाहिए। मगन अवस्था में, मगन अवस्था में भी कब रहेंगे, जब बहुत स्नेह से बाबा को याद करेंगे। काम के लिए नहीं, किसी कार्य के लिए नहीं, किसी सेवा के लिए नहीं। नहीं तो बच्चे जब भी कोई कार्य होता है, काम निकलता है, सेवा होती है, तो बाप को बड़े प्यार से याद करेंगे। बाबा फल भी दे देता है, चलो तुम भले सेवा अर्थ कार्य अर्थ मुझे याद कर रहे हो, मैं फल दूंगा। ऐसे नहीं कि मैं फल नहीं दूंगा, पर तुम मुझ में मगन नहीं हो पाओगे, क्योंकि याद करने में तुम्हारा स्वार्थ है। जब जब तुम स्वार्थ भाव से मुझे याद करोगे, तुम्हें बस प्राप्ति होगी, तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जाएगा, जिस स्वार्थ के लिए तुमने मुझे याद किया था। पर मैं नहीं मिलूंगा, मुझे पाना है तो निस्वार्थ भाव से मुझे याद करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता तुम्हारे जीवन में अभी सुख चल रहा है लौकिक रूप से या दुख चल रहा है, उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारे कार्मिक अकाउंट है। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम मुझे किस भाव से याद करते हो। चेकिंग करो अपनी कि बाबा को याद करते समय हम किस भाव से याद करते हैं, निस्वार्थ भाव से या स्वार्थ भावना से। अभी तक क्या किया यह भी चेकिंग करो, और अभी तक स्वार्थ भावना से याद कर रहे होंगे तो अभी तो बदल लीजिए कि जीवन में दुख आए या सुख आए, बाबा को बस निस्वार्थ भाव से याद करेंगे, किसी कारण से याद नहीं करेंगे। कारण से याद करना बहुत बुरा और खतरनाक संस्कार होता है, बहुत बुरा संस्कार है कारण से। चेक कीजिए अपने आप को। तो बाबा कहते हैं किस अवस्था में हो चेक करो। ज्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो, बाबा पूछ रहे हैं, ज्यादा समय आपका लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में रहते हो। जो संसारी है वो स्थिति तक भी नहीं पहुंचेंगे, लगन तो बहुत दूर है, मगन तो छोड़ी दीजिए। मगन अवस्था में कौन पहुंच सकते हैं? जिन्होंने बुद्धि से संसार को भूला है, जिनकी बुद्धि में संसार बैठा है, वो मगन अवस्था में नहीं पहुंच सकते। नाम रूप मान शान धन, इसमें जो फंसे हैं वह ईश्वरीय सुख क्या जाने, वो कभी मगन अवस्था में पहुंच ही नहीं सकते। और बाबा की अनुभूति मगन अवस्था में है। अपने को चेक करो। बाबा कहते हैं, बहुत गई थोड़ी रही, अभी तो मुझ में मगन हो जाओ, अभी तो हो जाओ। कब तक तुम संसार करोगे? बुद्धि से, बाहरी रूप से हर किसी को संसार करना है, लेकिन बाबा वही कह रहा है कि बुद्धि से भी कब तक करोगे? बुद्धि मेरे में लगाओ, मुझे याद करो। तो चेक करो, ज्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो। स्थिति में आएंगे तो लगन आसानी से लग जाएगी, और लगन की गहराई होने के बाद, लगन की गहराई माना बाप की बहुत परेशान करने वाली याद जब आपको शुरू हो जाएगी, माना मुझे बस बाबा चाहिए इस प्रकार से, इसलिए बाबा ने इसे कहा परेशान करने वाली याद, जब शुरू हो जाएगी वो लगन है। लगन माना एक बाप के अलावा और कुछ नहीं याद आए, बस बाबा बाबा बाबा, इसे लगन कहा जाता है। जैसे लौकिक में बाबा कहते हैं कोई आशिक माशुक होते हैं तो कितना याद सताती है एक दूसरे की, वो लगन है। जब एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे में खो जाते हैं, वो मगन अवस्था है। तो पहले आपके अंदर लगन शुरू होनी चाहिए। हर कर्म में बाबा याद आए, हर श्वासों श्वास बाबा याद आए, इसलिए बाबा ने इसे कहा परेशान करने वाली याद, कि बाबा के अलावा और कुछ भी याद ना आए। जब ऐसी अवस्था होगी तब कह सकते हैं कि आप लगन अवस्था में हो। आपको क्या लगता है, आप अगर बाबा की याद में रहो तो बाबा आपके संसार को नहीं संभाल सकता? इतनी भी ताकत नहीं है क्या बाप की याद में कि बाबा आपके संसार को चला सके, बाप की याद आपके संसार को चला सके? चेक करो, ताकत तो बहुत है पर आपको विश्वास नहीं है, इसलिए आप संसार के पीछे भाग रहे हो। क्या बाबा की याद में इतनी भी ताकत नहीं है कि आपको चार टाइम का भोजन आसानी से मिले? चार टाइम की बात कर रहे हैं, दो टाइम की भी नहीं। आपने कभी अनुभव करने का प्रयास ही नहीं किया। आपको लगता है आपके कार्य किए बिना आपके संसार का पत्ता नहीं हिलेगा, यह आपकी गलत फहमी है। आपकी हर सांस बाबा चलाता है, आपका संसार तो बहुत आगे की बात है, ऐसे ही बाबा चला देगा, पर आपको विश्वास नहीं है, इसलिए आप संसार के पीछे भाग रहे हो बाबा की याद को छोड़कर। चेक करो, कितनी तड़प है आपके अंदर बाबा की याद के लिए, अपने को चेक करो। बस कहते हैं बच्चे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, कहने से कुछ नहीं होता। याद के लिए तड़प होनी चाहिए। तड़प होगी तो याद कर पाएंगे और लगन की गहराई में पहुंच जाएंगे। मगन अवस्था फिर भी बाकी है। लगन अवस्था में पहुंचेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, वापिस कहते हैं, तब ही मगन अवस्था की शुरुआत होगी। अभी मगन अवस्था में खोना भी बाकी है। मगन अवस्था में खो जाएंगे तभी आप समाधि का अनुभव कर पाएंगे। समाधि माना क्या है? एक में खो जाना। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ने की बात है। समाधि 2 मिनट की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, 2 दिन की भी हो सकती है, पर प्राप्ति उसी में है। मगन अवस्था की गहराई में समाधि है, जहां सिर्फ आप और बाप हैं और कुछ भी नहीं है। इसलिए इस यात्रा पर चलने के लिए अपने को तैयार करो। स्थिति, लगन, मगन और समाधि चेक करो। ज्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो, चेक करो। अपनी चेकिंग तो करते होंगे, बाबा पूछ रहे, अपनी चेकिंग तो करते होंगे। सभी अपनी अपनी चेकिंग करें। अच्छा, सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर की रिजल्ट का मालूम पड़े। विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। बच्चे पूछ रहे कि सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर की रिजल्ट का मालूम पड़े कि कहाँ तक हम पास होते हैं, हुए हैं, मालूम पड़े। बच्चे अपनी अवस्था को चेक करें। आप अगर अपनी स्थिति में हो तो आपका रिजल्ट आपके पास है। आपका रिजल्ट आपके पास है। बाबा को भी पूछना नहीं पड़ेगा कि रिजल्ट क्या है। समझ की बात है बच्चों के लिए। अभी वापिस इसमें वही बात आती है, रिपीट होके, अवस्था वाली। जब से ज्ञान मिला है, जब से बाप मिला है, हम किस अवस्था में रहते हैं? अगर बाप के साथ जुड़े हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप की पहली श्रीमत है, बच्चे अपने को आत्मा समझो, यह पहली श्रीमत है। दूसरी श्रीमत है, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। दूसरी श्रीमत है। अभी याद करने के लिए बैठने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे कहेंगे हमारे पास समय नहीं होता याद करने के लिए। आपकी आंखें, कान, मुख, हाथ, पैर लौकिक कार्य करते हैं। मन बुद्धि को याद में लगाओ। बाबा कहाँ कहता है कि इन सभी कर्मेंद्रियों को बाबा के कमरे में बिठाओ और मुझे याद करो? ये भी तो नहीं कहता। भले इन कर्मेंद्रियों को चलाते रहो लौकिक कार्य में, लेकिन मन बुद्धि से मुझे याद करो। याद का भी संस्कार बनाना पड़ेगा। बहुतों के पास याद का संस्कार नहीं है। ऐसे नहीं कि अपने आप याद हो जाएगी। संस्कारों में याद होगी तो मन संकल्प चला पाएगा। मन ने संकल्प चलाया तो बुद्धि देख पाएगी। बुद्धि ने देखा तो वापस मन संकल्प चला पाएगा। और इन दोनों में जो कुछ हो रहा है वह संस्कारों में नोंद हो जाएगा। इसलिए याद करने के लिए भी संस्कार चाहिए। याद का बिना संस्कार के इस दुनिया में आप कोई भी कर्म नहीं कर सकते। आपके सारे कर्म वचन संस्कारों से होते हैं। इस बात को बुद्धि में पक्का कीजिए। जिस प्रकार से खाने पीने का, उठने बैठने का, पहनने का संस्कार है, उसी प्रकार याद का संस्कार बना लीजिए। जिसके पास याद का संस्कार है उसे बाबा को याद नहीं करना पड़ता, उसे बाबा याद आ जाता है, क्योंकि वह संस्कार है। समझ की बात है। जिसके पास गाड़ी चलाने का संस्कार है उसे गियर बदलना नहीं पड़ता, गियर अपने आप बदला जाता है संस्कारों वश। ब्रेक, क्लच, एक्सेलरेटर ये सब करना नहीं पड़ता, स्टीयरिंग ये सब अपने आप होता है, क्योंकि गाड़ी चलाने का संस्कार है। समझ की बात है। उसी प्रकार याद का संस्कार होना चाहिए। जिसके पास याद का संस्कार है ना, कहाँ भी जाए, बाबा का कोई चित्र भी देखा तुरंत बाबा याद आएगा, कोई धुन भी सुनी बाबा याद आएगा, कोई बाबा का गीत भी सुना बाबा याद आएगा, सफेद वस्त्र भी देखा बाबा याद आएगा, बैज भी देखा बाबा याद आएगा। जिनके पास याद का संस्कार नहीं है ना, उन्हें बाबा के कमरे में बिठाना पड़ता है ट्रांसलाइट के सामने, तब भी मुश्किल बाबा याद आता है। ऐसी अवस्था है उनकी। उनको अपने आप को जगह पर लाना पड़ता है तब बाबा याद आता है। किसी किसी का संस्कार इतना बड़ा है, दिव्य है, कि किसी गाड़ी पर भी स्टिकर देखे बाबा का, घर पर भी देखे तो भी बाबा याद आ जाता है। कोई आत्मा किसी को ओम शांति भी करे फिर भी बाबा याद आता है। इतना दिव्य संस्कार होना चाहिए बाबा की याद का। किसी भाई बहन को भी देखे, वैसे तो आत्मा आत्मा भाई भाई, तो किसी भी भाई को देखे तो भी बाबा याद आना चाहिए। इतना दिव्य संस्कार होना चाहिए। किसी के पास इतना दिव्य संस्कार होता है कि लाल लाइट देखी ही देखी कि बाबा याद आ जाता है। देखिए कितना बड़ा संस्कार है कि बाबा की हर बात से उन्हें बाबा याद आता है। संस्कार होना चाहिए। बिना संस्कारों के आप बाबा को याद नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखना। बच्चे याद तो करना चाहते हैं, पर समय अनुसार, अमृत वेला, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमाशा, यह बच्चों की याद है। बाबा कहते हैं मैं दिन भर तुम्हें याद करता हूं और तुम मुझे बस समय पर याद करते हो, जब तुम्हें फुर्सत मिलती है। क्या इतना भी प्यार नहीं है मुझसे कि मैं दिन भर तुम्हें याद आ जाऊं? इतना प्यार है तुम्हारा संसार से कि दिन भर तुम्हें संसार याद आता है, मुझे भूल जाते हो। समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे भूल जाते हैं बाबा को। ऐसे समय पर याद करना यह कोई याद नहीं है, यह तो स्वार्थ भावना है, यह तो जबरदस्ती हुई। अरे चलो 7 बज गए, नुमा शाम हो गया, बाबा की याद में बैठते हैं, ऐसे कोई याद होती है क्या? कोई कहे कि 7 बजे है, नुमा शाम हो गया, कहो दिन भर हम बस बाबा की याद में होते हैं, बैठने की आवश्यकता नहीं है, हमारी मन बुद्धि बस बाबा की तरफ लगी है, भल हम कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, बाबा ने हमारा संस्कार ही याद का बना दिया है, तो अलग से याद करने की आवश्यकता क्या है? कोई कोई बच्चे हैं, बाबा कहेंगे बाप समान हैं, जिन्हें सपने में भी बाबा याद आता है किसी न किसी रूप में। कोई कोई बच्चे हैं जो सपने में भी अनुभव करते हैं कि हम बाबा की याद में बैठे हैं, गीत लगा के, लाल लाइट लगा के, या फिर ऐसे ही, लेकिन बाबा की याद में बैठे हैं, ऐसे सपने आते हैं। क्या संस्कार होगा बाबा की याद का, आप विचार कीजिए। बिना संस्कार के आप बाबा को याद नहीं कर सकते। कोई भी कर्म करने के लिए संस्कार चाहिए। समझ की बात है। जैसे आप कहते हो ना, आपकी दुनिया में किसी देश में गए, कोई नया पदार्थ खाना है जो कभी आपने सुना नहीं, देखा नहीं, बनाया नहीं, तो आप कहते हो पहले इसके टेस्ट को समझना पड़ेगा, फिर उसके टेस्ट को धारण करना पड़ेगा, फिर हम उसे खा पाएंगे। तो कुछ समय तो जाता है ना उसकी टेस्ट को धारण करने में। टेस्ट को धारण करना माना क्या है? संस्कार बनाना। आपने उस पदार्थ की टेस्ट का संस्कार बनाया। अब कभी भी आप उस देश में जाएंगे तो आप वो पदार्थ खा पाएंगे, क्योंकि आपने उसकी टेस्ट का संस्कार बना लिया। बात वही है, संस्कारों के बिना आप बाबा को याद नहीं कर सकते। हर आत्मा चेक करे, मेरे अंदर बाबा को याद करने का, बाबा की याद का संस्कार कितना है, हर आत्मा चेक करे। ये ज्ञान भी सुन रहे हैं बाबा को याद करने के लिए। आपके अंदर ज्ञान सुनने का संस्कार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान से करना क्या है? याद ही करना है ना बाबा को, तो याद का संस्कार कितना है चेक कीजिए। अगर याद का संस्कार नहीं है तो ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। ज्ञान मिला ही है बाबा को याद करने के लिए, वरना ज्ञान को क्या करेंगे? करेंगे क्या ज्ञान का? इसलिए अपने को चेक करो, मेरे अंदर बाबा की याद का संस्कार कितना है। क्या हर कर्म में, हर घड़ी, हर घंटा हम बाबा को याद कर पाते हैं? अपने आप बाबा याद आना चाहिए। जिन्हें अपने आप बाबा याद आता है उनका बाबा से स्नेह है, प्यार है। जिन्हें बाबा को याद करना पड़ता है वो स्वार्थ भाव से बाबा को याद कर रहे हैं, उनका स्नेह नहीं है बाबा से, बस काम के लिए, कार्य के लिए, सेवा के लिए बाबा को याद कर रहे हैं। बस अपना काम हुआ, बात बन गई, बाबा अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मेरा काम हो गया। ऐसे बच्चे हैं। क्या सुदामा ने श्री कृष्ण जी को स्वार्थ भाव से याद किया था? चेक कीजिए कि मुझे कुछ मिले, क्या स्वार्थ भावना से वो गए थे? चेक कीजिए। समझ की बात है बच्चों के लिए, अपनी खुद की चेकिंग कीजिए। चेकिंग करेंगे तो पता चलेगा कि हमारी याद कौन सी है। अभी भी बहुत गई, थोड़ी रही। अभी उस थोड़ी की क्या करना है या क्या करनी है आप जानो। बाबा कोई फोर्स नहीं करेगा, मर्जी बच्चों की। बाबा अंत तक प्यार से समझाता ही रहेगा, मर्जी बच्चों की। आखिर जिन्हें बनना है वो बनकर ही रहेंगे, यह ड्रामा में नूंद है। अभी उसमें आप हो या नहीं हो यह आपकी मर्जी है, यह आपकी मर्जी है। तो अपने को चेक करते रहो कि हम बाबा को कितना याद करते हैं, बिना मतलब के, निस्वार्थ भावना से और स्नेह से, प्यार से कितना याद करते हैं। अपनी चेकिंग करते रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। याद सदा कायम रहे और वह भी स्नेह से, प्रेम से, निस्वार्थ भावना से। अच्छा, ओम शांति।